नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, यदि आप किसी महापुरुष की जीवन कहानी पढ़ें तो आप पाएंगे कि उन घटनाओं का बहुत ही गहराई से जिक्र किया हुआ होता है जहां उन्होंने संघर्षों का सामना किया हुआ होता है। उन्हीं बातों का वर्णन किया जाता है जहां उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां थीं, बातें थीं, समस्याएं थीं, और उन्होंने अपने सूझबूझ से, अपने धीरज से, अपने साहस से उसे पार किया। आमतौर पर जीवन यदि सहज रूप से चल रही है उसकी चर्चा नहीं होती, लेकिन यदि विपदाएं आ गई हैं और तब हमने बहुत साहस से उसका सामना किया है उसकी ही चर्चा की जाती है। समस्याएं जब जीवन में आए तब हम भी उसके लिए ऐसे ही एटीट्यूड को अपनाएं कि भले ही समस्याएं आ गई हैं लेकिन मैं बहुत धीरज से, बहुत प्यार से, बहुत ही शालीनता से और शांति से इसे पार करूं। और धीरज के समय ही तो हमें अपने और पराए की परख होती है। और आपको महसूस भी होगा कि जब कभी समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, तब हमें भगवान की भी याद सबसे ज्यादा आती है। इसीलिए शायद कबीर ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जिस समस्या से भगवान की भी याद आती हो, हम उसकी ओर बढ़ते हो, तो वो समस्याएं तो फलदायक और कल्याणकारी हो जाती हैं। तो जब समस्याओं के लिए, विघ्नों के लिए हम इस प्रकार का एटीट्यूड अपनाते हैं तो समस्याएं बहुत सरल और सहज हो जाती हैं। समस्याओं को सरल करना ही समाधान का विशेष उद्देश्य है। और समस्याओं को सरल करने में हमारी मदद करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राता जी, मुझे विचार ही आ रहा था ये कि सचमुच यदि तमाम जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं उन सबके यदि जीवन को देखा जाए तो किसी का जीवन ऐसा नहीं रहा है जो बिल्कुल ही सहजता और सरलता से अंत तक पहुंचा हो।
सत्य तो यही है कि महान पुरुषों को महान बनाया ही परिस्थितियों ने। टीचर बन गई वो उनकी, और उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाने वाली बन गई जी। और जब उन्होंने उसको पार किया तो बहुत कुछ सीख लिया। ऐसा एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति सचमुच महान बन जाता है। कुछ लोग संसार में ऐसे हैं, परिस्थितियां जिन्हें नष्ट कर गई, परिस्थितियों ने जिनका मनोबल सदा के लिए गिरा दिया, परिस्थितियों के कारण जो सदा के लिए निराश हो गए, वो तो कुछ नहीं बन पाते। लेकिन जो परिस्थितियों से बलवान बन जाए, जो ऐसा सोच ले कि परिस्थितियां मुझे कुछ सिखाने आई हैं और ये आई हैं तो जाएंगी और मुझे अपने मनोबल को कमजोर नहीं करना है, ये आज हैं तो कल ये नहीं होंगी, सभी मनुष्यों को परिस्थितियों को पार करना ही पड़ता है, अगर ऐसी मेंटेलिटी बना ली जाए तो सचमुच परिस्थितियां मनुष्य के गुड फ्रेंड बन जाते हैं।
बिल्कुल, ये कह दिया जाए परिस्थितियों को कि परिस्थितियां आप टफ नहीं हैं बल्कि हम आपसे ज्यादा कहीं टफ हैं। हाँ। और ये भी कह दिया जाए कि आप कितने भी बड़े हों लेकिन आपसे भी बड़ा भगवान हमारे साथ है, आपसे भी बड़ा हमारा आत्मविश्वास है, तो निश्चित रूप से परिस्थितियां भी हल्की होकर भाग जाएंगे।
बिल्कुल, अगर हम अपना नाता अपने परम पिता से जोड़ लें तो न केवल ये एक भावना है या हमें केवल उससे शक्तियां मिलती हैं, लेकिन वो भी जब हमसे जुड़ जाता है तो जैसे दो फ्रेंड हों, एक पर कोई मुसीबत आए तो दूसरा उसे मदद मिलता है, मदद करता ही है। बाप है, बच्चे पर कुछ परिस्थिति आ जाए तो माँ बाप भी उसको मदद करते हैं। हम भी अपना नाता अगर अपने परमपिता से जोड़ लेते हैं, बहुत लवफुल रिलेशनशिप, तो वो भी हमारे कार्यों में सहयोगी बन जाते हैं। तो जैसे हमारी समस्याएं हमारी न रहकर उसकी हो जाती हैं और वो बहुत बल देने लगते हैं हमें, उसके समाधान को टच कराने लगते हैं हमें। और अगर हम सवेरे उठकर थोड़ा पीसफुल्ली होकर मेडिटेशन में बैठें तो हर समस्या का समाधान ऊपर से हमें आने लगेगा, जैसे वो गाइड कर रहे हैं और हम फॉलो कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। दादा जी, जो प्रश्न आज हमारे पास है, कुछ फोन कॉल्स आए थे उनमें से मैं ले रहा हूँ। हैदराबाद से हमारी एक बहन कहती है कि ये किसी के साथ प्यार करती थी और अब उन्हें धोखा मिल गया है, अपना सब कुछ ये कहती हैं कि उन्हें मैं सौंप चुकी थी, मेरे घर वालों को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब वो जो लड़का है वो शादी से मुकर रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहती हूँ। और ऐसा ही एक दूसरा प्रश्न भी हमारे पास, एक फोन कॉल आया था प्राता जी औरंगाबाद से, उसमें ये कहती हैं कि मेरे जो फियांसे हैं मुझे अब इग्नोर करने लगे हैं और मैं हमेशा उन्हीं के बारे में लंबे समय से सोचती रही हूँ, कॉलेज में भी अब मेरा मन नहीं लगता, कंप्यूटर क्लास में भी मन नहीं लगता, अब ये चिंता मुझे सताई जा रही है कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दें। तो ये एक प्रकार के, दो प्रकार के प्रश्न है हमारे पास, लेकिन लगभग एक जैसे ही हैं।
देखिए, देहधारियों से प्यार हमेशा धोखा देने वाला ही रहा है। बहुत कम सच्चे प्यार होते हैं आजकल संसार में, क्योंकि कलयुग ही झूठा हो गया, तो इसमें प्यार भी झूठा हो गया है। काश इन्होंने भगवान से इतना प्यार किया होता, उसे अपना दिल दिया होता, तो ये कुछ और बन गई होती, संसार को बहुत कुछ देने की योग्यता इनमें आ गई होती। पर आजकल युवकों में ये बहुत चल रहा है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव बहुत आ गया, और नेचुरली क्योंकि वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो फ्रेंड बनते ही हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं बॉयज एंड गर्ल, और ये रिलेशनशिप बनते हैं। लेकिन मनुष्य की मेंटेलिटी ऐसी है, उसको सामाजिक बंधन भी हैं, उसको कुछ अपने पेरेंट्स के बंधन होते हैं, तो एक युवक भी सदा ही किसी लड़की की इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर सकता सदा ही। इसलिए इन दोनों ही लड़कियों को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड होकर, थोड़ा सा समझदार होकर चिंतन करना चाहिए कि मान लो शादी कर भी लेते और वो उनके परिवार वाले इन्हें स्वीकार न करते, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी और से उनका बहुत प्यार हो तो ये इनको इग्नोर कर रहे हों, कुछ भी कारण हो सकते हैं, या पहले इमोशनल इनका प्यार हो गया हो, अब एक दूसरे की कमियों का पता चल गया हो तो प्यार टूट गया हो। अब तो यही है कि उस चीज को दोनों ही छोड़ दें और अपनी नई राह लें। अब इनका समय बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी स्टडी के लिए, काम आखिर वही इन्हें आनी है सदा के लिए, ये तो काम आने भी नहीं थे, और प्यार करने वालों को पता ही होना चाहिए कि प्यार टूटेगा अवश्य। जैसे विदेशों में अब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि भाई किसी के साथ हुआ है प्यार, उससे मैरिज कर ली, वहां तो कोर्ट में ही होती हैं, और ये कभी भी टूट सकता है, तो दे आर रेडी फॉर दिस, फैमिली ब्रेक होंगी, टूटेगा ये नाता, वो इसके लिए तैयार रहते हैं, इसलिए उनके मन पर कुछ ज्यादा इफेक्ट अब नहीं आता है। कमजोर तो वो भी होते हैं इमोशनली, लेकिन बहुत लोग इसको स्वीकार कर चुके कि एक एक जीवन में कम से कम तीन तीन बार तो मैरिज हो ही जाएगी उनकी। इंडियन कल्चर तो इसको स्वीकार नहीं करती है, इसलिए यहाँ के लड़के लड़कियों को थोड़ा पहले से ही समझदारी से काम लेना चाहिए। इमोशनली होकर किसी के भी पीछे चल देना ये बहुत उचित नहीं होता। कई बार ऐसा हुआ है कि इमोशनली होकर प्यार कर लिया, शादी कर ली, और जब लड़की उस लड़के के साथ उसके घर गई तो देखा उसका तो एक झोंपड़ी है केवल, कुछ भी नहीं है,
बहुत सब्ज बाग दिखा देते हैं,
सब कुछ बड़ी बड़ी बात कर देते हैं, उसकी माँ है और कोई नहीं है, और माँ ने भी इसके जाते ही इसको डांटना शुरू कर दिया, तो इसने तो सोचा मैं नर्क में कहाँ आ गई, अब माँ बाप के पास किस मुंह से वापिस जाऊं, सब कुछ बिगड़ गया। तो थोड़ा समझदार होना चाहिए हमारे युवकों को, प्यार करना एक चीज है और जीवन साथी चुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जी जी जी, तो इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान दें। पता है, अपने कैरियर पे फोकस्ड हो तो कितना अच्छा हो कि हम एक बार अपने आप को स्थायी रूप से कहीं सेट कर लें, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, उसके पश्चात तो इन सब चीजों की शुरुआत होती ही होती
बस
है।
बस ये युवक जरा इंतजार करना इनको नहीं आता है, जो कुछ है बस अभी अभी हो जाए, पीछे देखा जाएगा, अरे कल किसने देखा है, जो कुछ है आज ही आज है, लेकिन सचमुच इन्हें अपने तत्कालीन लक्ष्य पर ही बहुत ध्यान देना चाहिए, बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, बाद में भी होंगी। और क्योंकि ऐसा आजकल बहुत कुछ हो रहा है, मेरे पास भी वही लड़कियां फिर फोन करती हैं कि हमने प्यार कर लिया था, हमारी लव मैरिज हुई, लेकिन अब हमारे दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है, या हमारी सास से मेरी बिल्कुल नहीं बनती है, तो एकदम जीवन में एक बहुत संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, भावनाएं भी टूट जाती हैं, क्योंकि पहले जब प्यार हुआ था तो एक दूसरे को बड़ा अच्छा समझते थे, जब बिल्कुल समीप आए, साथ रहने लगे, तो उनके अवगुणों का पता चला, वो दिखने लगे, वो कैसा व्यवहार करता है, वो कितना डांट डपट करता है, वो इनका सम्मान ही नहीं करता है, सम्मान बहुत बड़ी चीज होती है ना, तो इनका दिल टूटने लगता है, इसलिए समझदारी की बहुत आवश्यकता है।
तो एक जो हमारी हैदराबाद की बहन है वो कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगी हूं, और दूसरी ये कह रही है कि कहीं भी मन नहीं लग रहा है और ये चिंता सताई जा रही है कहीं वो छोड़ ना दें, ऐसे में प्रेजेंट टाइम इन्हें क्या करना चाहिए?
इसमें तो इन्हें बहुत समझदारी पूर्वक अब खुद ही उन्हें छोड़ देना चाहिए, ताकि माँ बाप स्वतंत्र रूप से इनकी मैरिज अरेंज करें, और निश्चित रूप से जब इन्हें अभी डर है कि वो कहीं छोड़ न दे तो इनकी मैरिड लाइफ बहुत सक्सेसफुल होगी भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा अब स्पिरिचुअलिटी की ओर ये बढ़ें, अपने जीवन को महत्व दें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें तो इनकी टेंशन थोड़ी सी कम हो। और जैसे मैंने पहले कहा, कुछ चीजों को युवकों को स्वीकार करना ही चाहिए, जैसे विदेशी कल्चर में पहले यही हुआ था, इसलिए मानसिक रूप से बहुत त्रस्त हो गए थे लोग, अब त्रस्त तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेते हैं कि यही जीवन का उनके को नियम है, ऐसे ही होना है। तो इन्हें थोड़ा सा भी स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए और तनाव को कम करके फिर से एक सुख भरा जीवन, खुशियों से भरा जीवन जीने की कला सीख लेनी चाहिए, जो हमारे सेंटर्स में, हमारे सेवा केंद्रों में बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है। तो ये परेशान ना हो, वहां जाएं और वहां इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा।
व्रता जी, आजकल जो ये कल्चर में ही शामिल हो गई बात, वो कई बार ये कहा जाता है हंसी में कि आजकल हम केपीएम कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, खाओ पियो और मौज करो, तो ये जो एक कल्चर चला आ रहा है, चाहे हम किसी भी प्रकार से चर्चा करें, मीडिया के द्वारा भी यही परोसा जा रहा है, आमतौर मेट्रोज में हम देखते हैं, तो यही एक कल्चर बन गया है कि भाई यही जीवन है। तो मुझे लगता है कि शायद युवाओं के पास और कुछ इससे इतर, इससे हटकर सोचने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता, उन्हें लगता शायद यही जीवन है कि एक तो फ्रेंड होना चाहिए जिसके साथ अपना हर चीज शेयर करें, सुख दुख शेयर करें, तो चूंकि उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, कोई और कुछ किया जा सकता ये नहीं सोच पाते, इसीलिए शायद इसमें ज्यादा प्रवाहित हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें और इसका क्या समाधान हो?
देखिए, यही कि फ्रेंड होना चाहिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर एक दूसरे के अधीन हो जाते हैं वो, एक दूसरे की खुशी नष्ट होने लगती है उसमें, एक दूसरे से वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखने लगते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं उनके अंदर अधीनता ले आती है, और फिर जिस लिए उन्होंने फ्रेंडशिप जोड़ी थी वो लक्ष्य तो बहुत दूर रह जाता है, उसमें प्रवेश कर जाती हैं वासनाएं जो उनके माँ बाप को स्वीकार नहीं होती, फिर होता है संघर्ष, फिर होता है सुसाइडल टेंडेंसी, और इससे सब कुछ नष्ट हो जाता है, और एक करता है दूसरा सीखता है, दूसरा करता है तीसरा सीखता है, इस तरह हमारे देश की संपूर्ण जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बैडली प्रभावित हो रही है।
बिल्कुल प्रता जी, आजकल जितनी भी मूवीज आ रही हैं या सीरियल्स की भी हम बात करते हैं, जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव युवा वर्ग पर और सभी पर पड़ता ही है, उनमें भी यही सारी चीजें जब दी जा रही हैं तो युवा तो सीखेगा यही कि ठीक है ये सब दी जा रही हैं तो जरूर ऐसा करने से आनंद आता होगा। तो उनके पास जो हमारी संस्कृति की बात आप बार बार करते हैं कि हमारी संस्कृति सचमुच बहुत श्रेष्ठ रही है, महान रही है, एक सुंदर व्यवस्था रही है, हर चीज के लिए एक समय नियत किया गया था, आश्रम व्यवस्था रखी गई थी कि इतने समय तक स्टडी होनी चाहिए, अपना कैरियर संवार लें, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। अब जो चीजें आ रही हैं बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
बिल्कुल, ये हमारा फिल्म डिवीजन, ये फिल्म इंडस्ट्री और उसके डायरेक्टर्स या उसके कहानीकार जो कहानी लिखते हैं, इन सबको इस चीज का कोई आभास नहीं है। उन्हें तो ये है कि मैंने एक फिल्म बना दी, ये इतनी बिकनी चाहिए, इतने करोड़ की संपत्ति मुझे इससे कमानी है, उनको तो केवल ये लक्ष्य है। उसका क्या इफेक्ट युवा वर्ग पर होगा, ऐसे चिंतक तो वो हैं ही नहीं, उनको इसकी न चिंता है न उनके पास इस तरह का चिंतन है।
कुछ लोग ऐसी अच्छी फिल्में वैसे बनाते भी हैं ब्राता जी, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम
है। वो चलती नहीं तो फिर बनाने वाले भी सोचते हैं इस पे पैसा खर्च किया जाए, ये चली तो नहीं, हमारी कुछ कमाई नहीं, क्योंकि आखिर तो उन्हें कमाई चाहिए, तो फिर छोड़ देते हैं। तो टोटल ये सब भी जिम्मेदार हैं इस चीज के, लेकिन युवकों को स्वयं ही सोचना होगा हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, देखना है तो उनसे क्या सीखना है ये भी तो सिखाया जा रहा होगा, तो इससे भी उनको बचना चाहिए। अगर वो इस तरह की फिल्म देख ही रहे हैं तो उससे उन्हें ऐसा सीख लेना चाहिए कि वो इस उलझन में कहीं उलझ न जाएं।
बिल्कुल, इससे कहीं ना कहीं ये इस चीजों से मुक्त हो पाएंगे। और विशेष करके व्रता जी, ऐसे में माता पिता का भी क्या दायित्व रहता है? मान लीजिए दो चीजें हैं, एक तो प्रारंभ से ही वो बहुत अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दें, और लेकिन यदि ऐसी कंडीशन, जैसे हमारी दो बहनों ने शेयर किया है, यदि ऐसी कंडीशन में बच्चे पहुंच जाए तो उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए?
देखिए, कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि माँ बाप खुद ऐसी कंडीशन से गुजर के आए हैं, लेकिन तो भी वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास वो नैतिक बल नहीं होता उनके बोल में ऐसा प्रभाव नहीं होता कि बच्चे उनकी बात सुने, और कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि आजकल बच्चों को उनकी सारी कहानी का पता भी होता है, क्योंकि वो बता देते हैं सब। बहनें माताएं ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ छुपाने की बात नहीं है, सब कुछ बता देते हैं, और नहीं तो बच्चों को ही बता देते हैं। लेकिन फिर भी अगर माँ बाप सोचें कि हम जिस कटु अनुभव से निकल कर आए हैं वो हमारे बच्चों को कटु अनुभव ना हो, तो उन्हें स्वतंत्र भी रखें और उन्हें मर्यादाएं भी सिखाएं। ऐसे बहुत सारे परिवार हमने देखे, हमको मिलते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को कहा है अच्छा तुम देख लो, अनुभव करके देख लो सब तरफ, फिर तुम्हें जो अच्छा लगे हमें बता देना। लेकिन वो अनुभव करके जो उन पर मानसिक इफेक्ट होगा उसका क्या होगा, वो
तो
हो जाएगा
तो बिल्कुल भी नहीं,
बिल्कुल
है
सही नहीं। कितने माँ बाप मुझे मिलते हैं जो आजकल की दुनिया में बड़े रॉयल फैमिली साहूकार लोग, अपने बच्चों को स्वतंत्र छोड़ा हुआ, जो तुम्हें करना हो जिस फील्ड में जाना हो जाकर देख लो, हमारी ओर से पूरी छुट्टी है, पैसे की तो कोई कमी नहीं होती, पूरी छुट्टी है, अनुभव करके आ जाओ, फिर तुम्हें जो करना है ना वो हमें बता देना। तो ये मेंटेलिटी हो गई है मनुष्य की, क्योंकि वो भी ऐसी चीजों से गुजर कर आए हैं, तो बच्चों को वैसी स्वतंत्रताओं देते हैं और इसमें बच्चे आगे चलकर बहुत परेशान हो जाते
लेकिन मुझे लगता है ब्राता जी ऐसे बहुत कम माता पिता होंगे जो इस प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं। हमारे देश में ज्यादातर तो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े हुए हैं,
वो नहीं देते,
वो तो बिल्कुल ही अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो हमारे घर की शान है, इज्जत है, तो उस इज्जत को कोई न खेले उसके साथ और वो हमेशा बरकरार रहे, यही कामना रखते हैं।
बस इसमें तो यही है कि माँ को विशेष रूप से अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, इन चीजों की जानकारी देनी चाहिए कि देखो ऐसा भी होगा, तुम किससे प्यार करोगे, उन्हें पता होना चाहिए बच्चे प्यार करेंगे। मेरे से ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, गांव की माताएं मिल रही थी, बताया हमारी लड़की कॉलेज में पढ़ने गई थी, अब तो ये हो गया उसको, हमको तो वो पूछती नहीं है, हमको तो मूर्ख समझती है, बिना पढ़ी लिखी माताएं लड़कों के साथ घूमती रहती है, जहां तहां लोग हमें कहते हैं तुम्हारी लड़की लड़कों के साथ घूम रही है, हम क्या करें भाई। तो फिर भी वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाते जरूर हैं अच्छी बात, तो उन्हें थोड़ा अच्छा सिखाना अवश्य चाहिए कि इसमें तुम्हें धोखा मिलेगा, प्यार करना है तो सोच समझ के करना है, हमें बताओ किससे आप प्यार कर रहे हैं, किससे आप शादी करना चाहते हैं, कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना तब तक। तो अगर माँ बाप थोड़े प्रभावशाली हैं तो अपने बच्चों को प्यार से शुभ भावनाओं से एक अच्छी लाइन पर ले आते हैं
जी। एजुकेट करना बहुत जरूरी है जैसा आप कह रहे हैं प्राता जी, क्योंकि एक उम्र ऐसी आती ही है लड़के और लड़की के जीवन में जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारे शारीरिक और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये नेचुरल सा हो जाता है कि एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस माँ और बाप दोनों ही दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी यदि वो नहीं देते हैं तो वो फिर कहीं और से एकत्र करना शुरू करते हैं और इसी में शायद वो कहीं ना कहीं गलत रास्ते में निकल जाते हैं।
तो दिखता है कि उनके साथ ही ये कर रहे हैं, उन्हें भी यही करना है, वहां तो उनके सामने आदर्श वही है ना, उनके साथी हैं, उनको ही उन्हें फॉलो करना है, और इससे कहीं ना कहीं उनके जीवन में आगे चल के गिरावट आ जाती है।
कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वो नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाती है, पता नहीं सामने वाला जो उनका दोस्त है कितना जानता है, वही उन्हें सब सिखा देता है और ये लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। व्रता जी एक ऐसा ही एक मेल हमारे पास आया है आगरा से, ये कहती है कि आई एम कंचन, माई प्रॉब्लम इज दैट आई वॉन्ट टू डिलीट पास्ट experience of my life, someone cheated me, hurt me a lot, and now am not at all in contact with that person, but still in the subconscious mind I have hold that person, I want to delete that person completely from my mind and life, what should I do?
बहुत अच्छे ये अनुभव लोगों के आते रहते हैं
जी,
कि वो व्यक्ति इनके subconscious mind में समा गया है और वो इनको बिल्कुल नहीं चाहता, वो छोड़
ब्राता जी, वो इतने सब्ज बाग दिखाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए महल बनाऊंगा, ताज महल हो या जो भी हो, तो ये शायद निकालना बहुत
मुश्किल है। अभी जो लड़कियां हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं लड़कों से, लड़कों का क्या है प्राय बहुत सारे लड़के कईयों को गर्लफ्रेंड बनाए हुए होंगे और लड़कियां सोचती हैं मेरा ये एक ही है बस, तो ये इमोशनल और सेंसिटिव ज्यादा होने के कारण ये सब चीजें इनके सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा गहराई से उतर जाती हैं। अब फिर वो भूलती नहीं, सपने में वही आएंगे, खाना खाएंगे तो वही, चिंता भी वही सारा।
जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी फोन कॉल की, जो हमारी औरंगाबाद की बहन थी, कि उनको हर जगह
वही दिखाई देता है, तो लोगों ने तो कहा भगवान को जिधर देखता हूं तो तू है, पर इनको अपने प्रेम ही जान देखता हूं तू ही तू है। अब वहां होता है धोखा। ये लड़कियों को समझना ही चाहिए कि प्यार में धोखा मिलेगा, क्योंकि ये प्यार विशुद्ध प्रेम नहीं है, निष्काम प्रेम नहीं है, स्वार्थ भरा प्रेम है, ये वासनाओं से भरा प्रेम है। तो अब इनको डिलीट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो इसके लिए तो देखो यही बात है कि ये कुछ और प्रिंट करें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। अगर ये सचमुच अपने जीवन को एंजॉय करना चाहती हैं तो इन्हें कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट की बातें सीखनी पड़ेंगी हमारे सेवा केंद्रों पर जाकर, और अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन को जीने का एक मार्ग बदलना पड़ेगा थोड़ा। देख लिया ना इन्होंने, कई कई तो ऐसे हैं दो तीन बार भी धोखा खा चुकी होती हैं, तो बिल्कुल टूट गई होती है
बात, वही आ जाती रहता है जो पहले भी मैंने आपसे की कि ऑप्शन ही दिखाई नहीं देता। हम शायद कोई अदर ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं कि भाई यदि संसार में हो तो यही संसार की रीत है कि किसी के साथ रहना है। एक सुंदर लक्ष्य हो जीवन का, उस लक्ष्य का शायद कहीं ना कहीं अभाव,
पूरा ही अभाव हो रहा है। इसलिए इन्हें चाहिए थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान ये लें और कुछ स्वमान की बातें सीखें, कुछ राजयोग मेडिटेशन की बात सीखें। देखिए जब हम सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैं आत्मा हूं, आई एम प्योर, आई एम पीसफुल, आई एम लवफुल, तो बहुत सारी चीजें जो प्रिंट हो गई थी वो डिलीट होने लगती आपे ही आपे। जैसे ही हमारा चित्त शांत होता है तो बहुत सारी निगेटिव चीजें या कोई भी चीज डिलीट होने लगती है। तो ये बॉडीलेस होने की प्रैक्टिस करना, इस पर चिंतन करना, स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना, इसे धीरे धीरे ऐसी चीज जो हमने प्रिंट कर ली है, जो हमें अब कष्ट दे रही है, जिसे हम भुलाना तो चाहते हैं पर शायद वो हमें छोड़ना नहीं चाहती है, या हमने इतनी डीपली उनको समा लिया है अपने अंदर कि अब हम उनको बाहर निकाल नहीं सकते। कहीं कहीं ऐसा भी होता है हम निकालना भी नहीं चाहते उनको, हम एंजॉय करते रहते हैं उस सोरों को भी। तो इसके लिए ये मेडिटेशन और एक गुड चिंतन जो हमें सिखाया जाता है हमारे आश्रमों में, उससे इनको मदद मिल सकती है।
और एक चिंतन ये भी जरूर रखें भ्राता जी कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे की सुध ले। कहते हैं ना, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। तो वास्तव में जीवन तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और किसी एक व्यक्ति के कारण हम अपने वर्तमान को क्यों नष्ट कर रहे हैं, क्यों दुख से उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। ठीक है, हम आगे की ओर देखें और जीवन का संपूर्ण आनंद लें, ये भी हम लक्ष्य रखें। भ्राता जी एक हमारे पास जो SMS आया है, ये कहती है कि ओम शांति, मैं ये प्रोग्राम रोज देखती हूँ, अर्थात समाधान रोज देखती हूँ। मेरे कई सवालों के जवाब मुझे मिले हैं और कई प्रॉब्लम भी सॉल्व हुए हैं, पर मैं एक सवाल का जवाब बचपन से ही जानना चाहती हूँ कि जब कुटुंब या खानदान में किसी की डेथ हो जाती है तो क्या महीने भर के लिए पूजा पाठ छोड़ देना सही है या गलत? कृपया मेरे सवाल का जवाब दें। मैं रोज मेडिटेशन करती हूं, आपका ये चैनल बहुत ही अच्छा है और सबका मार्गदर्शन हो रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये मनीषा जी हैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से।
इनके यहाँ ऐसी प्रथा होगी कि वेस्ट बंगाल में देवियों की पूजा बहुत ज्यादा होती है और एक शुद्ध परिवेश बन जाता है ना, उसमें पूजा पाठ माना बहुत प्योरिटी, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस, तो इनके यहाँ ये मान्यता संभव है। वैसे तो मृत्यु होती है तो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हमने तो सब जगह यही देखा, पर भारत के भिन्न भिन्न हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं भी प्रचलित हैं। तो संभव है इनके यहाँ ये हो कि किसी की मृत्यु हो तो 20 दिन, 1 मास पूजा पाठ सब छोड़ दी जाए। वो उसका कारण यही है केवल कि उसको ये अशुद्धि मानते हैं और पूजा पाठ को शुद्धि। लेकिन वास्तव में अगर पूजा पाठ की जाए तो उसके वाइब्रेशंस, इन निगेटिव वाइब्रेशंस को नष्ट करने वाले होंगे। लेकिन ये तो मेडिटेशन करती है, तो जो आत्मा शरीर छोड़कर गई है उसको ये मेडिटेशन के द्वारा रोज योग के अच्छे वाइब्रेशंस दे, ताकि वो कहीं भी भटके नहीं, उसका सहज पुनर्जन्म हो। और उसके मन में अगर कोई अशांति वो लेकर गई है, कोई दुख या पीड़ा साथ लेकर गई है, वो उसके अंतर मन से डिलीट हो जाए, तो ये इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो पूजा पाठ अगर छोड़ भी दी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेडिटेशन इसमें अवश्य चालू रखना चाहिए।
बिल्कुल, ताकि जो गई हुई है आत्मा उसको शांति मिले, शक्ति मिले। और कई बार हम लोग दिया भी तो जलाते हैं ब्राता जी, कि 13 दिन तक दिया दीपक जलाओ या एक मास तक दीपक जलाओ ताकि उसे रोशनी प्राप्त हो, कि ये इस बात में भी
ये मान्यता है। वास्तव में रोशनी तो चाहिए ज्ञान की
जी,
रोशनी तो तब देनी चाहिए थी जब वो जीवित
था,
और मरने के बाद रोशनी का फायदा भी क्या, और आत्मा को तो जाने के लिए इस प्रकाश की तो जरूरत नहीं होती, उसके लिए तो वो स्वयं प्रकाशित है। लेकिन ये मान्यताएं भक्ति में चलती आ रही है कि आत्मा भटक न जाए इसलिए दीपक जला दो भाई, रोशनी दो, लेकिन ज्ञान के ही दीपक की जरूरत है। तो वास्तव में ये मेडिटेशन बहुत अच्छा करें, और उस आत्मा को रोज एक टाइम फिक्स करके कम से कम 15 मिनट अच्छे वाइब्रेशंस दें, ये इनका उसके लिए प्रेम भी होगा और उस आत्मा के कल्याण का मार्ग भी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, विशेष रूप से जो आज हम लोगों की चर्चा हो रही थी वो ये कि हम कहीं भी यदि उलझ गए हैं जीवन में, खास करके स्टूडेंट्स की बात हो रही थी कि यदि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, यदि कोई समस्या आ जाती है, यदि कहीं हमें धोखा मिल जाता है, तो आप एक बात अवश्य ध्यान में रखें कि जीवन यहीं समाप्त नहीं हो जाता। हम ये ना सोचें कि जैसे मेरा सब कुछ लुट गया, सब कुछ समाप्त हो गया, अब तो मैं जैसे जीवन का अंत ही कर लूं। नहीं, हम अपने माता पिता के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें, संसार के बारे में सोचें, और साथ ही अपने इस जीवन के बारे में सोचें जिसे हमें भगवान ने उपहार स्वरूप दिया है। एक बहुत अच्छी बात किसी ने कहा है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रहकर इसे बहुत खुशनुमा बनाएं, जीवन बहुत खूबसूरत है, इसका संपूर्ण आनंद लें, जो बातें बीत गई उसे बीत जाने दें, उन कड़वे अनुभवों से कुछ सीख करके आगे बढ़ें ताकि जीवन में फिर कभी ठोकर ना मिले। समाधान परिवार हमेशा आपके लिए शुभकामना रखता है कि आपका जीवन खुशहाली से भरपूर हो। नमस्कार।